أو نبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، آج معمول سے کچھ تاخیر ہو گئی اور وقت میں نے رات میں دیکھا تھا تو فجر کے فوراً بعد ہونا تھا، اس لیے کہ وقت پیچھے آ رہا ہوں، تو اتنا جلدی تبدیلی آئی ہے وقت میں، آتی ہے یہ دنوں میں جب سردیاں شروع ہوتی ہیں، تو جس کے یعنی ایک ہفتہ پہلے جو اپن مجلس کرے تھے اس وقت میں اور اس وقت میں فرق ہو گیا. وہاں سات بج کے 21 منٹ پہ عشاء ہو گئی وہاں پہ، تو یہاں اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہونا ہے، 6:30 بجے پہلے 6 بجے مغرب کے بعد ہو رہا تھا، 6 بجے عشاء کے بعد ہو جا رہا ہوں، عشاء کی بات کی وجہ سے 7 بجے کر رہا تھا میں. وہ سارا رات میں وہی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم 1 گھنٹے کی بات کرتے ہیں نماز پہ، نماز ہو کے بھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہو گئے گا، عشاء کی نماز ہو کے 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہوگا، تو رات میں ساجد سے بات کروں گا، اور رابطہ نہیں ہو سکا بچے سے. مقرر کیا گیا ہے سنت سے محرومی کی، اور جو آدمی سنت کو معمولی سمجھتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے واجب سے محرومی کی، اور جو واجب کو معمولی سمجھتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے فرض سے محرومی کی. تو اصل تو فرض ہے، واجب عملاً فرض ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو مسنون طریقہ ہے، اس مسنون طریقے میں جو مستحب بات ہے، پسندیدہ بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے صوفیہ کے پاس ادب کا لحاظ بہت ہے. ایسے شہر کو دوبارہ کھلا رکھ دو، خوش آئیے تھا مفتی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتیان کرام ہیں. بندوں کا بندوں کے ساتھ میں جو ادب ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کو آرام دیا جائے، تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچنے دی جائے، آرام پہنچا جائے، پہنچایا جائے. ادب کی حقیقت یہی ہے. ادب کی حقیقت نہ جھکنا ہے، ادب کی حقیقت نہ جو ہے فرشی سلام ہے، نہ کسی کے آنے پر کھڑے ہونا ہے، نہ پیچھے چلنا ہے، نہ جو ہے جھوٹا پی جانا ہے، پاؤں دھو کے پی جانا ہے. ادب میں یہ بات نہیں ہے، ادب میں راحت رسانی ہے. حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، صحابہ نے کھڑے ہونا چھوڑ دیا کہ جب آپ تشریف لائے تو کھڑے نہ ہوں، چونکہ کھڑے ہونا دل کی چاہت تھی اور نہیں کھڑے ہونا نبی کی راحت رسانی تھی. ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. تکبر والا جو انداز ہوتا ہے، جس میں تھوڑا سا بھی تبختر اور تکبر ہو، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چیڑ تھی، نفرت تھی آپ کو. की उरियाई और नापाक की चादर, तो हर वो अंदाज जिसमें थोड़ा सा भी बड़ापन होता वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत का बायस होता था। आपको गैरत आती थी उसमें अल्लाह की मोहब्बत में, क्योंकि अल्लाह पाक का हक है, अल्लाह पाक का ऐसा है, ये कोई बंदा इख्तियार करे अल्लाह को मुझे अच्छा नहीं दिखता, तो जब कोई दूसरा करे तो उनको अच्छा नहीं दिखता, तो खुद कैसे करते जो चीज अच्छी नहीं होती। इसलिए आपके हर अमल में हर वो शायबा जिसमें तकब्बुर की वो आती हो आप उसके खिलाफ में जाते थे। आकुलू कमाया कुल रब्द, मैं तो ऐसा खाता हूं जैसे बंदा खाता है, ऐसे खाना तो खुद खा रहे लेकिन उसकी हयात, उसकी बैठक, उसका अंदाज जिसमें भी जरा बड़ापन का असर होता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बाका देते, इनकार फरमा देते थे। और इसमें मुतकबरीन लोग जिस चीज को अपने लिए इज्जत की चीज समझते आप उससे बचते थे। इसलिए शेख रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौकी पर खाना नहीं खाते थे, क्यों? इस वास्ते कि ये उस जमाने में मुतकबरीन का तरीका था और मुस्लिमों में चाइनीज की तहजीब में शुमार था, चाइना की तहजीब थी, टेबल सामने हो उसको खा रखा हुआ, खा रहे देखने वाला मुझे अच्छा दिख रहा, वो अच्छा दिखना ही एक किब्र है उसमें। इसलिए टेबल पर खाना रख के खाना खिलाफ सुन्नत हुआ, जिस चीज को आमदन आपने तर्क फरमाया हो वो चीज खिलाफ सुन्नत होगी, और जिस चीज को आमदन आपने तर्क नहीं फरमाया तो वो खिलाफ सुन्नत होना जरूरी नहीं, चाहे मुआफिक सुन्नत ना हो। खिलाफ सुन्नत होने का उसूल ये नहीं है कि हुजूर ने नहीं किया उसको, हुजूर ने किया वो सुन्नत, हुजूर ने नहीं किया वो खिलाफ सुन्नत जब तक नहीं बनता जब उसका न करना आमदन साबित हो, कि आमदन आपने तर्क फरमाया, बहुत सी चीजें हुजूर ने नहीं की मगर वो खिलाफ सुन्नत नहीं है। नहीं की से मुराद ये है कि हमें पता नहीं चला, उसका सबूत नहीं है उसका, शायद गुज़िश्ता जुमा में ही आई थी बात, नहीं जवान जवान की पल्ली खाने की, जब हुजूर के जमाने में जवान की पल्ली थी कि नहीं थी साबित नहीं है रिवायतों में कि आपने गंवार की पल्ली भी खाई। गंवार अजमी को कहते हैं, अजमी है तो सारे गालब में नहीं थी होगी, और खेती बाड़ी में सब किस्म के फल फलियां होती है तो भी सकता हुई हो, गंवार ऐसे मेरे दिने से ये। अब इसको इस खाने को खिलाफ सुन्नत नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका आमदन तक साबित नहीं है, चाइनीज के तरीके पर खाने को वो हर थोड़ी देर को खगाता हूं, क्यों खगाता हूं समझ में, हर थोड़ी देर को खगा होने का इजहार करता रहता है, वो परेशानी की बात नहीं है। स्टेपलाइज दर लगाए वो आवाज में कहना बोल के फिर भी जान आवाज कर रहा, एक और चीज करके देखना है उसकी सतह नीचे की जो है सही करने का। तो जो आदाब होते हैं असल में वो रुबूबियत का हिस्सा है, असल बात आदाब जो है ना ये तरबियत के हिस्सों में से है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता अलग से सिखाया है, ये इल्म के अलावा का हिस्सा है। इस वजह से हदीस शरीफ में अल्लमनी रब्बी फअहसना तालीमी व अदबनी रब्बी फअहसना तादीबी है, मुझे मेरे रब ने इल्म दिया और बेहतरीन इल्म दिया और अदब सिखाया बेहतरीन अदब सिखाया। तो जाहिर है कि अदब में अमली रुख होता है, तरबियत में अमली रुख होता वो उसके आदब है। हर चीज में दाहिने जानिब को तरजीह देना अदब का हिस्सा है। कपड़े पहनो तो पहले जाए सीधे आस्तीन में हाथ, फिर बाएं आस्तीन में, सीधे पांचे में पैर, फिर बाएं में। तंगी करो तो दाएं तरफ पहले, फिर बाएं तरफ। मिसवाक करो तो दाएं तरफ पहले, फिर बाएं तरफ। ब्रश करो तो दाएं तरफ पहले, फिर बाएं तरफ। जूता पहनो तो दाएं तरफ पहले, फिर बाएं तरफ। फिर अमल का जो पहलू सलवी होता है उसमें बायां पहले होता, जैसे कुर्ता उतारते वक्त पहले दाया आहिस्ते उतारने का नहीं होता, पैजामा उतारते वक्त पहले बायां पाचा नहीं है, पहले दाया नहीं है बाया। जूता उतारते वक्त पहले दाया नहीं है, वो सलवी पहले है। वजह उसकी यह है कि हर चीज में तरजीह दायों को होने का मतलब यह है कि जिस चीज जो चीज अच्छी लाइन की है, और इसमें अच्छा लाइन यह है कि बाएं को तरजीह रहना। तो इसलिए कि जितनी देर तक आप बाएं को उतारेंगे उतनी देर तक दायों को आपने तरजीह दी। बाएं हाथ दिन आपका खाली हो गया, आपने हाथ उतार दिया था, दायां आपका देर तक दाएं में कपड़ा ढका हुआ रहा, बाया पैर का जूता आपने निकाल दिया तो थोड़ा वक्त लगेगा ना, तो ज्यादा देर तक दाया पैर आपका इज्जत दिया हुआ रहा कि उसमें जूता था, वो जूते में था, वो ये चक्कर है इसके पीछे। इसलिए सूफिया के पास अदब का बड़ा लिहाज है, यानी तरबियत में जो बात बताई गई है उस अमली उसकी अमली पहलू में उसका बड़ा लिहाज है। तो उनके पास यह है कि इस छोटी चीज की रियायत है, इससे आगे की तौफीक है, उस छोटी चीज की रियायत पर उससे आगे की तौफीक है, उसके बाद वाली चीज की रियायत पर उससे आगे की तौफीक है, और बेरियायती हिरमान का सबब है। और हिरमान जो है ना, ये इकाब की सूरत है, इताब की, सजा की। और सजा में जो है नेकी से महरूमी की जो सजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेकी में सबसे बड़ी नेकी ईमान है, ईमान से महरूमी की सजा सबसे बड़ी सजा है। ढांस मेरे को आ रही, आप लोगों को भी आ रही, कोई ढांस से आ रही नहीं, अंदर से आ रही है। फैन फैन खोल दो और लाइट खोल दो, ये बंद कर, फैन आहिस्ता रखो और लाइटें खोल दो। एक पेटी रखा हुआ है, एक उसके नीचे है, और एक लाइट खोल दो। हाँ भाई, फैन की खोल दो थोड़ा। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से नाराज होते हैं, बहुत ज्यादा अगर नाराज हुए तो उसका टेंडवा ऐसा नहीं दबाते कि खाना पीना उसका बंद करें, खाना पीना बंद नहीं करते। खाना पीना बंद करने का आम सिस्टम अल्लाह पाक का नहीं है। कहने वाला की जो तंगी है आजमाइश की शक्लों में से शक्ल है, सबर की आजमाइश के लिए और शुक्र की आजमाइश के लिए सिस्टम में आता हो, वरना वैसे खाना पीना बंद करना जो है ना, उसका ताल्लुक नेकी और बदी से नहीं है, उसका ताल्लुक मखलूक होने से है। मामिंदा बतिनशिला जमीन पर कोई चौपाया नहीं, मगर अल्लाह के जिम्मे उसकी रोजी है। मुशरिक को खिलाना, काफिर को खिलाना, चूंकि शिर्क और ईमान का इम्तिहान है, कुफ्र और तौहीद का, शिर्क और तौहीद का, कुफ्र और ईमान का इम्तिहान है। अब जब इम्तिहान देने के लिए आप रखे हैं किसी को, तो खाना पीना तंग करने का क्या है उसमें? अच्छा है तो भी खाना देंगे, बुरा है तो भी खाना देंगे। जो इम्तिहान में पास हो रहा है उसको तो हाल में बिठा रहे हैं आप, जो नहीं पास होने वाला है उसको भगा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं रहे। जो इम्तिहान का टाइम है उसमें पर्चा देने वाला रहो, लिखने वाला रहो, ना लिखने वाला रहो, ऐसे ढांचे वाक्य थे जिसकी वजह से जिसमें सा हुआ है थोड़ा सा तनफुस पे असर पड़ रहा है। इसलिए खाने पीने को नहीं, सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह तआला के मामले में बहुत हयूर थे और अल्लाह के दुश्मन से अपने दुश्मनी जरूरी समझते थे, चूंकि तौहीद के कमालात में से हो, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खसूसियत यह है कि वो अल्लाह के नाफरमान और अल्लाह के मुखालिफ से खाली दूरी अख्तियार करते थे, वैसा नहीं था उसको गोया, उसको गोया बोलो, गोया उसको जाके बोल के आते थे कि तेरी मेरे से नहीं बनने वाली है। इन्ना बुरा वो मिनकुम वो मिम्मा ताबदो ना मिन दुन इल्लाह कफरना बिकुम वबदा बैनना वबैनकुम अलअदावत वलबगदा अबदा हत्ता तुमनु बिल्लाह वादा। मेरे तुम्हारे दुश्मन गलत भूति होंगी, बस ईमान गलत भूत जाते, तो खुद उनके बारे में मशहूर है कि उनके दस्तखान बहुत वसी होता था और बगैर मेहमान के जिंदगी भर नहीं खाया। मेहमान अगर नहीं रहा तो घर से बाहर निकल के तलाश करके मेहमान मिलने के बाद उसको बुला के फिर साथ खाते थे। ज़ियाफ़त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास सिफत है, बहुत ही ज़ियाफ़त है, मेजबानी करना मशहूर है उनके बारे में कि एक मरतबा एक आदमी को पकड़ के लाए बाहर से, बिस्मिल्लाह बोलना जरूरी था खाने से पहले, बिस्मिल्लाह बोलो बोले तो उन्हें बिस्मिल्लाह नहीं बोला, या तो बिस्मिल्लाह नहीं बोला या बिस्मे गैरिल्लाह हो गया कुछ वहां पे किसी और के नाम पे उसने शुरू कर दिया। बस उसको उठा दिया खाने को, गुस्से में आया गया था मुझसे, तेरा तो है जो भी खाना खींच लेना चाहिए, मैं तेरे को कब देना बजा दी। बेचारा भूखा था और बहुत परेशान होकर शर्मिंदा होकर निकल गया और वही आ गए। इतने साल से उन्हें शिफ्ट करवा में कभी खाना बंद करा उसका, तो सारे से वो शिफ्ट कर रहा, मैंने तो खाना बंद नहीं किया, तू कैसे करते? तो वहां पे तो इतिहास था, जो तुम्हारी पसंद हो मेरी पसंद, जो तुम करे वो मैं करता हूं, बस आगे बाहर हाथ पांव जोड़े उसके मिन्नत समाजत की, नहीं बोलूंगा तेरे को, जो बोलना है बोल, नहीं बोलना है मत बोल, खाना तो कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास बात यह है कि उनकी अदा की हिफाजत बहुत की अल्लाह ने, उनकी अदाओं की हिफाजत की गई। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम, हमने बाद में आबाद में आने वालों में उसके असरात रखे इब्राहिमी चीजों के, इब्राहिम पर सलामती हो। कोई मुझे सुना रहा था अभी कल कल या परसों का एक किस्सा है, कल या परसों में सुना रहा था, कोई वो गए हुए थे बैतुल मुकद्दस देखने के लिए, घूमने के लिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजार पे भी गए थे वो, अल खलील शहर नाम का उन्हीं के नाम पे है, है, मजार भी है। तो वहां दो हिस्से हैं मजार इब्राहिमी के पास, एक दीवार की जैसी है, एक ऐसी बना हुआ है कि एक तरफ से यहूदी आके सलाम पढ़ के जाते, जियारत करके जाते, एक तरफ से मुसलमान जाते फातिहा खाने के वास्ते। यहूदी भी आ रहा फातिहा खाने के वास्ते, मुसलमान भी जा रहा। और जो मैं सुनाना चाह रहा था ये कि वो जो उनका मेहमान खाना है वो आज तक आबाद है। सुना जी हाँ, आज तक आबाद है। और उसके दो हिस्से हैं, यहूदियां अपना पका के आम बांटते, मुसलमान अपना पका के आम बांटते। लंगर है, जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से लंगर है, तो कभी बंद नहीं हुआ, फ्री में खाना। मुसलमानों में भी फ्री में खाना है वहां पे, और यहूदियों में भी फ्री में खाना है वहां पे, बाजाबता लंगर। और मशहूर यही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है मेहमान खाना है, उनकी ज़ियाफ़त का सिलसिला। महरूमी अल्लाह तबारक व ताला के पास, अल्लाह बचाए, वो ये है कि वो ईमान से महरूमी की सजा है, खाने पीने से महरूमी की नहीं, अमल से महरूमी की सजा है। और अमल से महरूम न होना ये इस्तेकामत फी दीन है, और अल इस्तेकामत फौका अल्फ करामत है। इस्तेकामत जो है वो हजार करामतों पर भी ऊपर है, और करामत इजहार इज्जत का नाम है। करामत इजहार इज्जत, करामत क्यों होती है किसी बंदे को? करामत में तो फाइल अल्लाह होते हैं, करामतुल औलिया हक्कुन, औलिया की करामत हक है। और खास बात यह है कि करामतुल औलिया मौजिज़ातुर रसूल, औलिया की करामत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा है। तो इसलिए करामत में ये भी ये चीज देखनी नहीं होती है कि हुजूर के साथ ऐसा नहीं हुआ, इनके साथ ऐसा कैसा। जब मौजूदों की जो शक्लें होंगी नई, तो नई नई ही होंगी वो शक्लें, तो जदीद मौजूदा हुआ, नई नई ही होंगी तो जदीद मौजूदा जब भी होगा वो। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में नहीं होकर भी किसी नबी के साथ में कोई चीज हुई तो वो हुजूर ही की बात है, हुजूर के फैज की वजह से ही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही वो हो रहा है, और वो हुजूर के मौजूदात में से है। रस्म कुल जमात की उसमें अकीदों की किताब में है बात, तो वो तो अलग तो रहेंगी फिर। अरे हुजूर के साथ नहीं हुआ, इनके साथ कैसा होता है, सब झूठे वाले। अलकादा उस्मान हारूनी जो है, अजमद नजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर, पीरों में पीर या दादा पीर, डायरेक्ट पीर या दादा पीर कुछ ऐसा है, उन्होंने अपनी माँ के ख्वाब में आके कहा था कि मैं बराना होना पसंद नहीं करता, बराना पैदा होना पसंद नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूं बेटे, पैदा होने का तो सभी पैदा होते हैं। आप रूई की गोलियां निकल लीजिए छोटी छोटी, रूई की गोलियां पेट में जाएंगी तो है रहम में, तो उसके बाद की कार्रवाई तुम्हारी नहीं हो रही, तुम्हारी कार्रवाई तुम खाली गोलियां निकल लीजिए, तो रूई की गोलियां निकल गई। जब पैदा हुए तो उनके सतर की जगह पे रूई लपटी हुई थी पूरी, डायपर उनका वहां से बंधा हुआ था, बड़ा सतर छिपा हुआ था उनके रूई से। उनकी करामतों में है ये, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराना पैदा हुए, ये कैसा हो सकता है? जो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करामत नहीं थी तो इनके लिए कहेगी करामत? भाई करामत के अंदर काम अलग अलग रहता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बहुत सी चीजें आदतुल्लाह के मुआफिक रखी गई, खिलाफ आदत का जहूर बाद में उनके हाथ में कराया गया, इब्तिदा में नॉर्मल हालत रखी गई ताकि उलूहियत के शुबे से बचाया जा सके, वरना बगैर बाप के भी पैदा हो सकते थे, बगैर माँ के भी, आदम अलैहिस्सलाम जैसा हुए वैसा हो सकते थे, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हुए वैसा हो सकते थे, हमारे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा हुए वैसा कैसे तो भी हो सकते थे, आसमान से अलग से आ जाते थे, मैं वो जो है अलग तरक्की हो जाती फिर बाद में फिर खुसूसियात का इजहार कराया गया। एक तो मौजूदा तो रसूल होते हैं करामात, दूसरी बात जो मैं असल कहना चाह रहा था वो फाइल उसमें अल्लाह होता है, करामात में फाइल अल्लाह, करने वाला अल्लाह। इसलिए करामतों का इनकार वही करता है जिसकी तौहीद में गड़बड़ होती है। करामत का इनकार तौहीद की अलामत नहीं है, करामत का इनकार अल्लाह ताला की कुदरत की महदूदियत है, अल्लाह को महदूद कुदरत वाला समझना है। ये नहीं हो सकता, ये लमे नहीं कर सकते। करामत को सिर्फ सनद देखी जाएगी कि बात तो ऑथेंटिक है नहीं है, सही जराये से पहुंची नहीं पहुंची, कुछ भी हो सकता है। करामत जो अल्लाह में कर सकते हैं वो हो सकता है। अलबत्त करामात की एक किस्म तसरुफात होती है जिसमें बंदे को इख्तियार दिया जाता है, वो करामत से दे दिया जाता है, करामतन वो इख्तियार दे दिया गया तो तसरुफात कहलाते हैं। जैसे बगैर मिसमरिज्म के, बगैर हिप्नोटाइज किए हुए के किसी पर असर डाल देना करामत की किस्म है। हिप्नोटाइज फन है, करामत नहीं है। ख्याल की एक्सरसाइज है, करामत नहीं है। करामत बगैर हिप्नोटाइज किए कि कोई असर डाल देना होता है, तसरु हुआ है क्योंकि वो चीज उनको दी गई। पहले के बुजुर्गान दिन में ऐसी झलकियां बालोखत जाहिर हो जाती थी, ऐसा कर देते थे वो लोग। अब खजाज मेरी के बारे में मशहूर है ना कि लोग मिलने के लिए आए तो उन्होंने कपड़ा डाल लिया अपने ऊपर, क्योंकि हम लोग आए बल्कि जो है शर्म के मारे कपड़ा डाल लिया, हमारे से बहस नहीं कर सकता तो बल्कि डाल लिया, बल्कि बोले जा दो। तो नहीं, मैं तुम लोगों से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ बोले। जब और ज्यादा उनको गैरत दिलाया तो उन्होंने कपड़ा हटा दिया चेहरे पे से, कपड़ा हटाते 40 के 40 जो खड़े हुए थे जैसे देखे सब मुसलमान हो गए, ना कुछ बोलना पड़ा ना बताना पड़ा, पूरी तैयारी कर रहे थे, देख के दिल पलटा देने का है इनका। वो करामतों में फाइल अल्लाह पाक होते हैं, तो जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं वो होता है। और करामत जो है ना वो असल में इजहार इज्जत के लिए, जब फाइल अल्लाह में आए तो इन्हों क्या है बीच में, तो ये महल जहूर होने की वजह से इज्जत अफजाई होती है उसमें, उनकी इतफाक की शक्ल है, सजा की शक्ल है। और इसका पुराने पाक में बयान है कि मुनाफिकीन से मुझे इतना नाराजगी है कि मुनाफिकीन के बारे में मैं ये चाहता हूं कि इनकी जान कुफर पे निकले। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज्जिबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया वतज़हक अन्फुसुहुम वहुम काफिरून, कि इनकी जान बेईमानी पे निकलने का, इस वजह से उनको इन्वॉल्व कर देता हूं दुनिया में। जब बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा आदमी दुनिया में, फुर्सत ही नहीं रहेगी उसको तवज्जो देने की, फिक्र करने की, सोचने की, फैसला करने की, उसी में उजावा रहेगा सुबह से शाम, शाम से सुबह। माल की और औलाद की कसरत इस वजह से भी होती है, बहुत पैसा इस वजह से भी आता है। अल्लाह पौधी का माल हूं व औलाद हूं, इन मुनाफिकीन की माल की कसरत और औलाद की कसरत, उनके माल और उनकी औलाद, ये आपको ताजुब में न डाले कैसे, क्या है ये कैसे क्यों है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज्जिबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उनको दुनियावी जिंदगी में आजाद दें, कि इसकी मशगूली ऐसे हिटक रहेगा, टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, माल नहीं है तो नहीं है लेकिन है तो उसको बचाना, बचाना, बढ़ाना, चोरी से अलग बचाना, कानूनी चोरों से अलग बचाना, गैर कानूनी चोरों से अलग बचाना, उसको बढ़ाना, बढ़ाने के चक्कर के अंदर 4 जगह खुजली लगा लेना, मैं मुंबई में पालनपुरी गांव के लाले पर मैं कहते थे कि जब आदमी कोई कारोबार बढ़ा के एक से दो दुकान करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि वो अपनी पीठ की खुजली को दूसरे को खुजाने को लगा देता है। तो वो खुद तो सामान नहीं सकता, किसी और को भी विश्वास बिठा रहा हूं। तो आप अपनी पेट की खुजली में किसी और को खुजाओ बोले ना, तो जहां पे खुजली हो रही वहां नहीं खुजाता, उन्हें दूसरी जगह खुजाता। ये मतलब मानो मतलब सब पालन पूरी बेचैनी में इधर फेंका जा रहा, खाली खुजली हो रही थी एक बेचैनी थी ना, अब वहां तो नहीं खुजा रहे दूसरी जगह खुजा रहे, दो बेचैनी हुआ। कारोबार में आपके मंशे के खिलाफ कर देता हूं, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं करता, जो नहीं चाह रहे हैं वो करता, और टेंशन बढ़ता। इसने एक से दो दुकान लगाई, एक से दो मलकियां की, एक से दो सोर्सेस बनाए, एक से दो कंपनियां खोली, लोग चाहते हैं मुख्तलिफ जराए आमदनी हो जाए कभी से कभी से, और टेंशन बढ़ाने वाला धंधा है। दुनिया की मशगूलियत अजीब चीज है। दुनिया की मशगूलियत एक खादिमाना होती है, एक मखदूमाना होती है। जब तक आदमी दुनिया का मखदूम है मजे में है, जब आदमी दुनिया में खादिम के दर्जे में आ जाता है कि वो दुनिया की खिदमत में है, तो खादिम का मजे में रहता, मखदूम मजे में रहता, वो दुनिया मजे में रहती, इन्हें खादिम परेशान रहता। या दुनिया इख्तिमी मन खदमनी और इस्तखदिमी मन खदमा की, जो तेरी खिदमत करे उसकी तो तू मखदूम हो जा, खिदमत ले उससे दस ले दस ले, और जो मेरी खिदमत में रहे उसकी तो खादिम बन जा, काम आ जाना उसके। एक आदमी पैसे बहुत है, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां, भारी भारी गाड़ियां, नई नई गाड़ियां खरीदता रहता है। एक आदमी फकीर है, टूटी फोड़ी जेब में नहीं है, वो सारी भारी गाड़ियों में बैठ के फिरते रहता है। के वसाइल की बहतात कराएगा ताकि मुसलमानों के इस्तेमाल में आ सके, बनाने के चक्कर में तू कहां जाता, मैन्युफैक्चरिंग में तू कहां जाता, तेरे फायदा उठाने का है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो मेरे को बागात होना, मेरे को एग्रीकल्चर होना, मेरे को महिला जी ने होना, वर्जुत आलो न समारात, जो फल है ये लोग है कल खुलिए, जो फल है वो दे दीजिए। अब वो मसनूई फल हो कि गैर मसनूई फल हो सब वहां पे ले लो। अब जितना चाइना की मंडी है पूरी मसनूई फल ही छुई ना जी, वो भी गैर मसनूई, वो भी फलों में जो फल है वो जितने महादिन है जखायर है वो घर बैठे रहे। तो ये फरमाया गया कि दुनिया की मशगूलियत ये कोई पसंदीदा चीजों में से नहीं है, ये तो अजाब की शक्लों में से एक शक्ल भी है, ये हम उसमें इन्वॉल्व करके उसको दुनिया का खादिम बना देते। इसलिए दुनियावी कसब की कस्बे दुनिया की जो मशगूली होती है उसमें होशियारी चाहिए थोड़ी। कस्बे दुनिया दुनिया कमाने की जो मशगूलियत है उसमें एक फहम और एक होशियारी चाहिए कि मैं इसके इस्तेमाल में आ जा रहा हूं या ये मेरे इस्तेमाल में आ रही चीज, मैं इसका मरकब हूं या ये मेरा मरकब है, मैं इसकी सवारी हूं या ये मेरी सवारी है। ये میری غذا ہے یا میں اس کی غذا ہوں. دنیا میں بڑی چھوٹی چیز کو بڑی چیز کی غذا بنا دیا جاتا ہے. میں اس کو کھا لیتا ہوں, 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 اس کو کھا لیتا ہوں. چونٹی سے لے کے آگے تک چلے جاؤ, آپ کو یہی ملے گا. توحید وجودی کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے, وہ یہ ہے کہ الہن کے معنی تجلل کے ہیں. غایت تجلل ہے نا, عبادت کیا اور غایت تجلل فنائیت ہے ایک کے دوسرے میں. چھوٹا بڑے کے سامنے فنا ہو جائے. اس لیے جو انہضام کا جو سسٹم ہے بہت سی چیزوں کو کھا جاتی ہے, جانور بہت سی چیزوں کو کھا جاتا ہے, زمین بہت سی چیزوں کو کھا جاتی ہے, آگ بہت سی چیزوں کو کھا جاتی ہے. اس کو ہاوی اس کو ہاوی اس کو فنا کر دیتا ہوں. ایک چیز دوسری چیز کو فنا کرنے کا ہی نظام ہے پوری دنیا میں, اور سب سے زیادہ فنا کرنے کی جو قدرت ہے وہ آدمی کے پاس ہے. انہیں آگ کو بھی کھا جاتا ہے, پانی کو بھی کھا جاتا ہے, مٹی کو بھی کھا جاتا ہے, ہوا کو بھی کھا جاتا ہے, بسائت کو بھی کھا جاتا ہے, موالد کو بھی کھا جاتا ہے. پورے کہیں بلواستا ہے, کہیں بلواستا. بچھو کو انہیں نہیں کھاتا, مگر مرغی بچھو کو کھا جاتی, انہیں مرغی کو کھا جاتا. کیڑے مکوڑے انہیں نہیں کھاتا, مگر کیڑے مکوڑوں کو ایک جانور کھا لیتے, انہیں وہ جانور کھا لیتا. شیر چیتے کو انہیں نہیں کھاتا, شیر چیتا ہرن کو کھا جاتا, انہیں شیر کا جوتا بنا کے پہن لیتا, جیکٹ بنا کے پہن لیتا. ہاتھی کو انہیں نہیں کھاتا, مگر ہاتھی کو کاٹ کے اس کے ہڈیوں کے اس کے دانتوں کے چھیکا بنا کے پہن لیتا, لگا لیتا, بچھا لیتا, رکھ لیتا, کچھ تو بھی کر لیتا. پوری دنیا میں تصرف کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ آدمی ہے. یہ آپ کے کام کی چیز بول رہا ہوں. اسی لیے الوہیت کی تجلی سب میں ہے. احب ان یعبد فی کل شأن و فی کل شیء, محی الدین ابن عربی کے جملوں میں سے ہے. توحید وجودی میں سے یہ جملے پہ بہت بڑا تھے سنشیا, مگر یہ ہر ایک کے سمجھنے کی ہے بھی نہیں چاہیے. شاید آپ کی وجہ سے یہ جملہ ذہن میں آ رہا ہے. مجالیہ شرک جو ہے ہمارے اعتبار سے وہ شرک کی ہے, شرک میں سے ہے, اور بحثیت مکلف ہونے کے اسے اجتناب ضروری ہے. مگر تکویناً کیوں ہونے دیا جا رہا اس کو, وہ ہے وحدت الوجود میں الوہیت کی تجلی ہونے کی وجہ سے. احب ان یعبد فی کل شیء, کیونکہ اس میں الوہیت کی تجلی ہے. جو الہ کے اندر تجلی پایا جاتا ہے, اس وجہ سے ہر چیز میں وہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. بول رہا ہوں ذرا ہے دور کی کوڑی, بہت سمجھنے میں وقت لگ سکتا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سنتا ہے. بہت سی باتیں ایسی بھی آتی ہیں بعض مرتبہ مذاکرے میں جو سمجھ میں نہیں آتی, خاموش ہو جانا چاہیے. اسی وجہ سے تصوف کی مجلس ہر کسی کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. مناسبت چاہیے کہ بولنے والا اس میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب رکھتا ہے کوئی, اور یہ بات خلاف شرع نہیں ہے. اسلام پہ اعتراض آنے والی, توحید میں اعتراض آنے والی نہیں ہے. اور محی الدین الربی وہی تو کرتے نا, استوات مکیہ کے شروع میں اپنے عقائد بیان کر دیے پورے, میں اس عقیدے کا آدمی ہوں, جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں پورے بیان کیے. تفصیلاً ہوئی. جتنے عقیدے ہوتے ہیں سارے بیان کے, خالی میں اہل سنت والجماعت کا ہوں بول کے نہیں بولے, میرے عقیدے یہ 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 ہیں, پورے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی تفصیل ہے. اور آگے کی جو باتیں ہیں وہ اس کے خلاف نہیں ہیں. بعض مرتب عقیدہ آدمی کا ایک ہوتا ہے, وہ آگے کی بات میں جو اس کے خلاف لازم آنے والی بات ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے لازم نہیں آنے والے کام کرتا رہتا ہے. جیسے قادیانی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. ختم نبوت کے انکار سے محمد رسول اللہ والے حصے کا انکار ہو رہا ہے, بلکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا شروع میں, بعد میں علماء سمجھائے تو سمجھنا نہیں چاہتے. پہلے جو ہے نا لزو میں کفر ہوتا ہے, پھر التجا میں کفر ہوتا ہے. لزو میں کفر پر تنبیہ تک فتوا نہیں ہوتا کفر کا, تنبیہ کے بعد فتوا لگتا ہے کفر کا کہ اب التزام بھی کر رہا ہے. لازم ملزوم کا مطلب نکال کے بھی دے دیا اہل علم حضرات کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے اس عقیدے سے یہ چیز لازم آ رہی, میرے کو اگر اصل نہیں تھی تو یہ اصل لے لو بول کے سمجھا دیتے ہیں لوگ. لازم آنے کو سمجھانے کے باوجود بھی آدمی اسی پر جمع ہوا ہے تو التزام ہو گیا, یعنی وہ جان بوجھ کے وہ اس کو اختیار کر رہا ہے, لہذا کفر کا فتوا آ جاتا. ابو العلا مودودی کی بہت سی چیزیں سمجھائے علماء کرام, مگر انہیں باوجود سمجھانے کے نہیں مانا, اسی بات پہ جمع رہا, اس لیے ازال اور مزل ہونے کا فتوا لگا اس کو جب تک نہیں لگا تھا. شیعہ ابو العلا مودودی شیعہ, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اعتراض ہو سکتا ہے, وہ اعتراض کا جواب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, اور وہ سوال جواب کے ہیر پھیر میں اس وقت نہیں جاتے صوفیہ اپنی مجلسوں میں, اس لیے اپنی کتاب کو یا اپنی مجلس میں شرکت میں ہر ایک کو آسانی سے اجازت نہیں دیتے. اب وہ چکر میں کہاں پڑھوں اس کا درد سب پالے گا کرتے. اور مجید بن عربی کی اس بات میں بڑا واہمہ پایا جاتا ہے, اور انہوں نے پہلے ہی بولے کہ میری بات خلاف شریعت نہیں ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, اور یہ بھی نہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی, اور یہ بھی نہیں کہ میں نہیں سمجھا سکتا, مگر اب میں سمجھاتے بیٹھ لینا نہیں چاہ رہا, تمہارا استعداد پیدا ہو جائیں گی جو ہماری فہم کے لیول میں ہے اس سے مناسبت ہو جائیں گی, تمہارے خود سمجھ میں آ جائیں گے. اور یہ بات اس پر چلی تھی انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا, ایک تو میں نے دنیا میں اولاد کی اور مال کی کثرت اس لیے رکھی تاکہ وہ اس میں بزی رہے, اور وہ ایک عذاب کی شکل ہے کیونکہ پھر وہ یہ ان کے خادم بن کے رہتے ہیں, وہ ان کے خادم نہیں رہتی, انہیں اس سے راحت حاصل نہیں کر رہے, انہیں اس سے راحت حاصل کر لیتی. وتزحق انفسهم وهم کافرون, اور ان کی جان نکلے, اللہ یہ چاہتے ہیں, اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ جان نکلے اس کی کفر کی حالت میں, اس کی مجبوریت کی وجہ سے ادھر کا موقع ہی نہ رہے, بے اکرامی کی شکل ہے, بے حرمت ہے, حرمان کی شکل ہے. اسے دینداروں کے پاس میں دین میں سستی ہو جانا, اعمال میں سستی ہو جانا, اور اعمال میں توفیق نہ ہو پانا ہی سزا ہے. عمل میں سستی پر استغفار کی کثرت ہے, معافی مانگو اللہ سے اور مجاہدہ کرو تاکہ توفیق کو لے سکو, مجاہدہ کر کے توفیق کو لینا ہوتا ہے, مجاہدہ کر کے توفیق کو لینا ہوتا ہے, پھر اس مجاہدے کی بھی توفیق ہوتی ہے, وہ بھی نایات میں سے ہے, اس مجاہدے کی وجہ سے عمل پر استقامت کی توفیق ہوتی ہے, وہ عنایات در عنایات میں سے ہے. پھر عمل کی اس توفیق میں اخلاص کی توفیق ہوتی ہے, وہ اس کا بطن ہے. پھر اس میں قبولیت ہوتی ہے, وہ اس کا بطن ہے. اس قبولیت سے قرب ہوتا ہے وہ اس کا بطن ہے. قرب رضا اور ایک رضا کی صورت ہوتی ہے, ایک رضا کی حقیقت ہوتی ہے. رضا کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی عادتوں میں سے ہے کہ بندہ جیسا کر رہا نا ویسے ہی اپنے کو دکھاتے رہتے. نیکی کرا, دعا مانگا اللہ میں سے, میں نیکی کرا اللہ کا اچھا لگا, ہوں گا دعا قبول ہوتی ہے, دعا قبول بھی ہو جاتی. وہ چار دن کے بعد میں برائی کرنے والا ہے وہ ان کو معلوم ہے, تو چار دن کے بعد کی برائی کے اعتبار سے برتاؤ نہیں رکھتے. یہ مطلب ہے ویسا موقع ویسی دوستی. بھائی بھی نہیں ایسا سمجھ رہا نا بھائی ایسا کر رہا نا سننا. ارے یہ کم بہت تو وہاں ایسا ہے حضرت. ارے یار دیکھیں گے وہاں ایسا بت دیکھیں. تو حقیقی رضا الگ ہے, صورتن رضا الگ ہے. جتنا تیرا دینا لینا گانا بجانا ہوتا ہے میرا لینا دینا بلکہ ایک حساب رہتا نا, ایک وہ شکل ہے اور ایک واقعتاً خوش ہے. واقعتاً خوشی جو ہوتی ہے نا اسی کا نام وصول ہے. اور رضا حقیقی وصول جو ہے اس کے بعد میں رد نہیں ہے, ارتداد نہیں ہے. یہ صوفیہ کا ایک مسئلہ ہے, الواصل لا يحرم, واصل محروم نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ولایت کی حقیقت مل گئی تو پھر انہیں جو ہے مردود نہیں ہوتا. شیطان کو اپنی عبادت کے زمانے میں ولایت کی صورت ملی ہوئی تھی, حقیقت نہیں ملی ہوئی تھی, اس لیے مردود ہوا. حالانکہ اس سے پہلے 600,000 سال سے عبادت کر رہا تھا. مشہور تو یہی ہے کتابوں میں 600,000 سال کے بعد میں کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کو تو معلوم تھا, اور اس کی وجہ سے رضا حقیقی متعلق نہیں تھی. اور 600,000 سال عبادت کی توفیق ہو رہی تھی, رضا سوری متعلق تھی. یہ مقام استغنا ہے, یہ وہ چیز ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا پتا بھی پانی رہتا ہے, انبیاء کا پتا بھی پانی رہتا ہے, اولیاء کا پتا بھی پانی رہتا ہے. اس کو پانی کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام تک کی زبان سے نکل جائے گا, تعلم معافی نفسی والا عالم معافی نفسی کا. میرے جی میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن آپ کے جی میں کیا ہے وہ میرے کو نہیں معلوم. نکانتا اللہ ملک جو جس کو یہ تھوڑا سا مضمون سمجھ میں آ جاتا, اس کو خوف کی حالت کے جو باتیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور تطبیق آسان ہو جاتی ہے. صدیق اکبر ہیں, خود ان کی معرفت, خود ان کا تقویٰ, اس پہ تو خیر ان کی نظر کیا جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں, خوشخبری دے دی آپ نے, اور نبی کی بات پہ ان سے زیادہ یقین کرنے والا کون؟ صدیق ہے. نبی کی بات پہ ان سے زیادہ یقین کرنے والا کوئی سچ ماننے والا؟ اور حضور صدیق اکبر کی موجودگی میں حضور نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. مسموع نہیں ہے, مسموع من الغیب نہیں ہے, مسموع من ذات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذات نبی میں متکلم جو ہے نا وہ اللہ ہی ہوتے ہیں. گفتگو گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود کیوں وما انتقو عن الہوا. ان کا بولنا اللہ ہی کا بولنا ہوتا تھا, اس لیے حدیث حجت ہے. قرآن کے ساتھ حدیث حجت ہے. حدیث حجت کیوں نہیں رہیں گی؟ قرآن میں جیسے متکلم ہوا ہے حدیث میں بھی متکلم وہی ہیں. حدیث دلیل عبادت. درجے جو ہے نا وہ حدیث کے پہنچنے کی وجہ سے بن گئے سو ہیں. بنا جو حدیث کنفرم حدیث ہے نا وہ بالکل پکی صاف چیز ہے, مثل قرآن ہو. ان سے سنے ہوئے یہ جنتی ہے وہ کر رہے. پھر خوف, پھر ڈر, پھر رونا, پھر لرزنا, پھر کاٹنا. تب سامنے والے کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو کیا حضور کی بات پہ شک تھا کیا؟ شک نہیں تھا. شک نہیں تھا. استغنا کا استغفار. پھر بھی وہ بنی بنیاد. فیصلہ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فیصلہ تھا, ہم بدل دیں. کیا کر سکتے اور کیوں بدلنا بول کے بھی نہیں بدل سکتے. ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. رہنا جاتی ہے اللہ غنی عند العالمین, سارے عالمین سے وہ بنی. اس کے وجود سے غنی ہے تو اس کا جنت میں جہنم سے ہونے سے ان کو کیا ضرورت پڑے گی؟ رکھتے ہیں یہاں, باہر رکھتے ہیں, اس میں رکھیں, یہ ڈبے میں رکھیں, کسی چیز کو کچرے کے. رضا حقیقی جو ہے نا وہ اصول حقیقی ہے, اس میں پھر ابتدا نہیں رہتا, ردت نہیں ہے اس میں, محدودیت نہیں ہے, لیکن اس کو پتا نہیں چلتا. ایمان پر خاتمہ اس کی علامت ہے, اس سے محرومی نہیں ہے پھر. اس لیے امن جو ہے نا وہ ایمان پر خاتمے کے بعد نصیب ہوتا ہے. امن حقیقی اور تسلی ہوگی. ان کے لیے عبرت بالخواتم. اس لیے جب ایمان پر خاتمے کی نوعیت دیکھ لیتے تھے صحابہ تو ان کی زبان سے نکل جاتا تھا فستو رب الکعبہ, رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, یعنی اب میں خطرے سے باہر ہو گیا. جب تک خطرے میں ہوتے تھے اپنے کو خطرے میں محسوس کرتے تھے. یہ وہ جملہ ہے کہ فستو رب الکعبہ, میں بہت پہلے سوچا کرتا تھا پڑھنے کے زمانے میں, فستو رب الکعبہ کا کیا جوڑ ہے؟ ان کو تیر لگ گیا, ان کو تلوار پڑ گئی, تو انہوں نے کہا فست و رب الکعبہ, رب الکعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. کیا چیز تھی وہ جس کی وجہ سے یہ بولتے تھے؟ جب تک جان ہے جب تک رسک ہے, ایمان پر ہی مار لگا, ایمان پر ہی جان, آخری خون کا خطرہ بہ رہا ہے, تو بولے اب رسک ختم. آخرت سامنے آ گئی, عالم غیب سے عالم مشاہدے میں چلے گئے, ایمان کے ساتھ گئے. اب اگر کوئی کلمہ غلط نکلا بھی زبان سے تو اعتبار نہیں ہے, اب اچھے ہی اعتبار رہے گا. اسی بات میں تو مرتے وقت میں نامناسب کلمہ نکل جانا اس میں خاتمہ کی علامت نہیں ہے. تکلیف کی شدت میں نکل گیا تو نکل گیا ہوں, عالم غیب منکشف ہونے کے بعد نکلا ہوں گا. وہ بھی ایک پہلے ذہن میں رکھنے جا رہی ہے, وہ بےچارے کے ساتھ ہوئے آدمی مت بولو ہوا کہ نہیں ہوا کہ کیا موقع ہے, کیا محل ہے, صورتحال کیا ہے, اس کی اندازہ نہیں ہوتا. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ تلقین کرنے لگے, کلمہ تو ادھر سے پڑھ رہے, ادھر آ کے پڑھے تو منڈی ادھر کر لے رہے. जराकपड़े तो मुंडी इधर कर ले, सारे लोगों में कलबली मच गई, क्या बुजुर्ग आदमी था यार, क्या नेक आदमी था, सर आखिर वक्त में कैसा हो जाएगा, करना नहीं देगा। एंड उस वक्त पे कहा बुजुर्ग आ जाए, उनको देखे क्यों बोल रहे पागलों को समझाओ, मैं मजकूर की तरफ हूं या जिक्र की तरफ ले जा रहा हूं। मैं मजकूर की तरफ हूं जो मेरे को उदय से नीचे उतारने के वास्ते जिक्र की तरफ ले जा रहे थे, तो देखने में मुंडी पलटा रहे थे उन्हें, लेकिन जिस चीज से मुंडी पलटा रहे थे वो उसी को बता सकते थे जो समझता था। और वक्त तो मैं ऊपर जाना चाह रहा हूं, उन्हें नीचे ला रहा मेरे को, इंतकाल के वक्त में यह हुआ कि उनकी तसल्ली के वास्ते जन्नतें उनकी आंखों के सामने कर दी, रोना आ गया। फरमाया कि अगर इसके लिए मैंने की है और मेरी मेहनत का ये अंजाम है, मेरी उम्र जाया होगी। अकल जया तो यह में किसका है, मुझे इब्ने फारिस का है। अगर मेरी मेहनत और मेरे मुजाहदे और मेरी अमाल का ये नतीजा है तो मेरी तो उम्र जाया होगी, हालांकि जन्नत ही कम है। अन्ना में बोले ये नहीं मानता भाई, हटा जन्नत हटा, अपनी तजल्ली फरमा दी, जान निकल दी। मैं जो तुम्हारे वास्ते कर रहा था जन्नत जन्म से मैं रुपया लेना नहीं, या तजल्ली जाति के लिए था मेरा काम, मैं आपको चाह रहा हूं जन्नत भाई जन्नत वालों के लिए, मेरे को नहीं होना हो सकता। एक होती है वो भी निस्बत, एक होती है मोहब्बत का एक लेवल है वो भी, एक मारिफत का एक लेवल है वो भी। ये जन्नत में भी जन्नती को जब ये मजा आएगा जब दीदार रहेगा, उस वक्त के बाजों को दीदार हमेशा रहेगा दाई में। हजरत फजल रहमान साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह के मनफजात में यह है कि जन्नत अल्लाह ने अगर दे दी और हूर भी दे दी तो हम तो उसी वक्त हूर को अपने पास बिठाएंगे जब वो हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे, हम बोलेंगे बीबी नमाज मेरे साथ पढ़ना है तो बैठे बाजू, अगर नमाज नहीं पढ़ना है ऐश करना है किसी और को पकड़ लो। इसे अंदाजा किया जा सकता है कि अल मौलाना फजल रहमान बन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकाम था, उनकी पहुंच कैसी थी, उनका जुमला बताता है बहुत ऊंची पर पहुंच गई। अगर थानवी को अपने अकाबरी में शुमार करते थे, अचानवी से बहुत बड़ी उम्र के थे, अचानवी की जवानी में उन्हें बूढ़े थे, और थानवी उनसे नियाज हासिल करने मुलाकात करने के लिए गए थे उनके पास, और थानवी उनकी मजलिस में तशरीफ ले गए मुलाकात के लिए। बहुत करम फरमाया था, बहुत शफकत फरमाई थी, दूसरे लोगों के साथ जो उनका बर्ताव था सलूक था बिल्कुल अलग था समाज, और ये रजा हकीकत के बाद करामत पे निकली, और करामत के बाद जो है ना इस्तकामत के साथ जुड़ी, استقامت جو ہے وہ توفیق خیر کے ذمن میں آئی, اور توفیق خیر کے بعد جو ہے نا وہ محرومی کے مقابلے میں آئی, اور محرومی جو ہے وہ عتاب اور عقاب کی شکل ہے اس کے ذمن میں آئی ہے. بھائی اس لیے نوامائے دنیا جو ہے نا ان کی کوئی حیثیت نہیں, وہ تھوڑے دن دنیا میں چلنے پھرنے گھومنے کرنے کھانے پینے رہنے سہنے کے واسطے انہوں نے وہ چیزیں رکھی بنائی ایمان والوں کے لیے, استعمال میں زیادہ بے ایمانوں کی آتی ہے دنیا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو اور طیب رزق کو, تو اللہ نے حلال کیا ہے. اور یہ بھی فرما دیجئے کہ بنایا میں نے ایمان والوں کے لیے ہے, مگر خالص ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ایمان والا جاننے کی وجہ سے اس میں مشغول ہوتا نہیں زیادہ. البتہ نعمتیں جو ہیں وہ آخرت میں خالص ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی, خالص ہی عمل کیا ہوں. کذالک زینا کیا اگلی آیت خالص یوم القیامہ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون, کافروں کے لیے مزین ہے ان کا عمل, اور عمل کے ساتھ میں دنیا کی نعمتیں ان کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں, بڑی کامیاب زندگی ہے ان کی. کامیابی کہاں نہ فرعون کامیاب نہ قارون کامیاب نہ حامان نہ شداد نہ قوم لوط نہ قوم ہود نہ قوم عاد نہ قوم سمود نہ قوم شعیب. نہ افراد نہ مجموعہ, بحثیت فرد ہو یا بحثیت مجموعہ, دنیا کی نعمتیں آزمائش اور ابتلاء, شکر کا امتحان, مصیبتیں آزمائش اور ابتلاء, صبر کا امتحان, نہ نعمتوں کا نہ ہونا محروم ہے, نہ نعمتوں کا ہونا فضل, یہ بھی آزمائش وہ بھی آزمائش. اپنے رضا والے عمل کی توفیق یہ فضل, اور اس پر استقامت یہ عنایت خاص. اس لیے ولایت کے ساتھ یہ کمال ہے, عمل کی توفیق ہے تو ولایت ہے. عمل کی قسمیں جن کو دنیا بعض وقت عمل سمجھتی ہے اس میں بعض وقت نہیں رہتا آدمی مشغول, کیونکہ نہ اسے بہت آگے کے عمل میں لگا ہوا ہوتا ہے. ملکہ یادداشت ہے, فکر ہے اسماء و صفات کی, تجلیات ہے اسماء و صفات کی, ظاہر ہے کہ یہ نافل اور یہ اذکار اور اورات اسے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے. میں نے عاشق و معشوق و رمزیست کرامن کا تبیرا ہم خبر نیست, عاشق و معشوق کے درمیان کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ کرامن کا تبین کو بھی خبر نہیں ہوتی. ایک سیکشن عمل کا ایسا ہے کہ فرشتے نہیں لکھ پاتے, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے کیا معلوم رہے, تمہارے کو معلوم نہیں ہے, یہ چیز میرے اس کے بیچ میں ہے, بے حساب ملتا بے حساب ملتا ثواب. فرشتے خود پریشان ہے کہ اپن لکھے ہی نہیں, دیتے جا رہے کیا ایک ہی کریں گے میں دیتا ہوں. उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है, तुम्हारा क्या तुप कर लेते। मेरा मामला है, मेरे बंदे का मामला है। इसलिए सुलू के पादरिया में फिक्र की अहमियत बहुत है, और फिक्र का नाम इनके पास सुलूक है। इसलिए इस सुलूक का नाम सिलसिला फाजरिया के सुलूक इल्मी है, और सुलूक इल्मी आयन अमल है इनके पास। इस सोच में रहना ही एक अमल है, और गुलाम नाजिम हो तिश्ना लग वाले सब कुछ है ना, हो गुलाम नाजिम व तिश्ना लग, ये ख्याल है ये महाल है। जहां इल्म आयन अमल हुआ वही नक़्द दम वही जात है, वही नक़्द दम वही जात है। नक़्द है, उधार का मामला ही नहीं है हमारे पास। बोला कैसी मेहनत की होगी हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि सुलू के इल्मी में हर वक्त का मुशाहदा मुआयना है, बोध नहीं है, फासला नहीं है, फ्यूचर में रूयत मुताबक होंगी वैसा नहीं है। रूयत बारी आखिरत में है ना भैया सर, बोले आखिरत में बसारत से बस, और बसारत से ज्यादा बसीरत की अहमियत है, और बसीरत में मुशाहदा है तो बसारत ही चो, ये कॉन्सेप्ट हो। अला इन्नहुम फी मिरयतिन मिन लिकाई रब्बिहिम, अला इन्नहु बिकुल्ली शयइन मुहीत, इनको सुबह है अपने रब से मुलाकात में, रब से मुलाकात होंगी नहीं होंगी, इनको सुबह है। अभी सुबह क्या है, शक में पड़े हुए बेटे कि मिलता कि नहीं कि रब बैठे। अब क्या है, मिलावा नहीं है, क्या पूछ रहे अल्लाह में, वो मतलब है अलाइन नो बिल्कुल शय मोहित का। सोचने वाले के वास्ते तो मुलाकात होंगी या नहीं होंगी तो बहुत दूर की बात है, मुलाकात नहीं है, मोहित है, हर शय को मोहित है। तो तू तो एक शय नहीं है, तू तो हजारों लाखों करोड़ों अशखास है, तू अशिया है। भाई हमारे अंदर जितनी चीजें हैं वो शय है ना भाई, एक ड्रॉप खून में, एक ड्रॉप पानी में, एक ड्रॉप जिस्म के किसी भी जूस में, कितने मिलियनों होते हैं, 40 मिलियन होना कहते एक एक ड्रॉप में, तो औलाद होती ना इंसान, तो 40 मिलियन अशिया तो एक ड्रॉप में है, और वो मुशाहदे वाले हैं, वो भी गैर मुशाहदे वाले अजाय रहा होता है, अजय अलग है। वो पूरी कायनात है गैर मुशाहद होकर भी, और वाकई तो वहां उनकी लताफत का अंदाजा होता है, वो भी बहुत दूर से होता है, कैसे लतीफ है। हमारे एक दोस्त डॉक्टर से मुलाकात हुई थी जमात में, रजब में लगा चिल्ला, मैंने डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि लैब में तजुर्बे के दौरान आंख से 3000 गुना नीचे, आंख के बिना इसे 3000 गुना नीचे से मैंने एक दूरबीन से देखा एक बैक्टीरिया को, जो आंख से देखना तो बहुत दूर की बात है, आंख से उन्हें आंख की बसारत से 3000 गुना नीचे है, नीचे को नीचे नीचे को नीचे नीचे को नीचे गए तो दिखने वाला है, और गहराई में गए और गहराई में गए और गहराई में गए। जैसे अब गूगल अर्थ तुम्हारे तो उन्हें कैसा था, पहले एक बड़ा डाटा था, उसके बाद खुलते जाता खुलते जाता खुलते जाता खुलते जाता फिर शहर निकलता, फिर खुलते जाता खुलते जाता खुलते जाता फिर आपकी बस्ती आई आपका घर आता, फिर खुलते जाता पूरा दिखाता उन्हें आपके घर का नंबर। तो शुरू में तो एक डाट है ना, तो हमारी बिनाई का जो निशान जा रहा है जो शुवा निकलती है उस शुवा से 3000 गुना नीचे। दूरबीन से देखे तो क्या है, एक बैक्टीरिया उनके स्तर से उनको दिखाए, ये देखो वो बता रहे हैं कि उसको 127 बाजू थे, उन्हें 27 की बात यह है कि उसका जो सर्कल बना हुआ था बाजुओं का 127 का, वो उसका हर जाविया बराबर मुसव्वा था, आगे पीछे टेढ़ा बिंगा नहीं था। वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत मैंने देखा, मैं बता नहीं सकता कि कितना ब्यूटीफुल था। बैटरी बहुत खूबसूरत रहते, डॉक्टर साहब बता रहे थे, क्या ही हसीन होते सुनाओ। वो भी शय है, ये बोलना चाह रहा था, वो भी शय है, उसको भी मुहित अला नो भी कुल्ली शय मुहित। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में ऐसे मौकों पर जितने जमीरें इस्तेमाल फरमाई हैं वो सब जात की तरफ लौटती हैं, इल्मी की तरफ नहीं लौटती। जमीर जो है वो सिफत की तरफ नहीं लौटती, जात की तरफ लौटती है। ये सलफियों को नहीं समझ में आता, भला इन्नहू है, अला इन्ना इल्महू थोड़ी है, अला इन्नहू भी कुंडु शय महित, वहुआ भी कुंडु शय महित, वहुआ भी कुंडु शय नलीम, वहुआ माकु मैना माकुन तुम। आजकल सेल्फियां बोल रहे थे, हमारे मुफ्ती अरशद बोल रहे थे कि आजकल सेल्फियां है ना, अल्लाह अभी शुरू करें, अल्लाह मियां कहां है, उनको भी मालूम है कि बेवकूफा पूछने वाले हैं। कहने वाले वकूफा मा कुम आईना मा कुन तुम, कहा है या तुम है वहां है। कुरान शरीफ में साफ है, अब तुम पैखाना में जाते नहीं जाते, तो पूछ रहे पूरे वहां कैसे रहते हो। वो महाकुम है ना, जो साहिल है उन्हें कुंतुम में आता ना, जो साहिल है वो कुंतुम में आता। जिब्राइल पूछे तो भी वो महाकुम है ना मा कुंतुम, मिकाइल पूछे तो भी वो महाकुम है ना मा कुंतुम, अंबिया पूछे तो, साहबा पूछे तो, औलिया पूछे तो, फिरौन पूछे तो, फारूक पूछे तो, मुसलमान पूछे, मुस्लिम पूछे, इंसान पूछे, जानवर पूछे, कोई मछली पूछे, कोई शेर पूछे, कोई चीता पूछे, कोई कीड़ा पूछे, कोई मकोड़ा पूछे, कुंतुम ये वो मकाम है कि जहां पर दूसरी चीजें बदरजे औला को शामिल हो, दूसरी चीजों को बदरजे औला शुमूलियत है, क्योंकि जो खिताब जबील अकूल के साथ होता है अगर जबील अकूल को आम हो जाता है, क्योंकि आला कियास आला सबील औलवियत के तरीक पर उस पर मिसदाक होता है। तो दूसरे को तो सवाल ही नहीं है इस वास्ते कुन तुम बोलने की जरूरत नहीं है, वहां तुमको बोल दिया था उसको तो शामिल होता ही छोटा फिर, जैसे मर्दों को खिताब करे तो औरतों को शामिल हो जाए। अगर जबील अकूल को करे तो गैर जबील अकूल को शामिल हो जाता है, जबील अरवाह को करे तो गैर जबील अरवाह को शामिल हो जाता है, जहां उसमें शमूलियत पाई जा सकती है ये कैद लगानी पड़ती है एतराजन। वह महाकुम है नवा कुल, अल्लाह का है अल्लाह आसमान में है, बोले तो अल्लाह तो बोला वह अल्लाह फिर समाई व फिल अल्लाह फिर समावाती अल्लाह फिर समाई वो अलग आए थे, ये अलग आए थे फिर समावाती व फिल याद मुझसे रखू मुझे आ रखू जमीन में कौन है अगर वहां से तो और हुआ माकुम है, इल्म हु माकुम नहीं है। हुआ जमीर जात की तरफ राजे होती है। कितने नुसूस में आप तौजीह करते जाएंगे, क्यों करना चाह रहे हैं तौजीह, क्या करीने है, सारी फॉर्म मौजूद है, क्यों कलाम को मजाज की तरफ ले जाना चाहते हो जब हकीकत के माना में कोई आपको गड़बड़ नहीं है। कलाम को उसकी हकीकत से हटाकर मजाज की तरफ जाने के लिए बहुत सख्त वजूहत चाहिए, वो है ही नहीं। बल्कि वो वजूहत अगर लेने को गए तो उल्टा हो रहा काम, समझ नहीं आने की, समझ में नहीं आने की वजह से उल्टा नहीं दिख रहा। क्यों? इसलिए कि वह भी कुल्ली शय मुहीत, और इहाता भी ज़र्फ़ और मज़रूफ़ियत का नहीं है। इहाता ज़र्फ़ और मज़रूफ़ियत वाला नहीं है, इहाता हाल और महल वाला नहीं है, इहाता कुल और जुज वाला नहीं है, इहाता जौहर और अर्ज वाला नहीं है। अर्ज को जौहर मोहित होता है, कलर वगैरह जो होता है ना, इनको आराज बोलते हैं। न जौहर और अर्ज वाला, न कुल्ली और जुजी वाला, न ज़र्फ़ और मज़रूफ़ वाला, न हाल और महल वाला, शयन के तकारुब वाला कोई अहाता नहीं, शयन के तकारुब वाला कोई अहाता नहीं। अहाता किस टाइप का है? अव्वलियत, आखिरियत, जाहिरियत और बातिनियत का। वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन। अहाता इल्म और मालूम वाला है, इसी वजह से वह बिकुल्ली शयइन अलीम है। वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन वह बिकुल्ली शयइन अलीम। जैसे आप अपने मालूमात के मुहीत हैं, वो अपने मालूमात का मुहीत है। आपके मालूम का क़याम आपके आपके ख्याल से, आपके इल्म से। आप अपने मालूम के अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। मालूम की नुमाइश का जो तसव्वुर आप कर रहे हैं वो तसव्वुर आपसे ही है, मालूम का कोई वजूद नहीं है वहां, मालूम के पास वजूद है। इस वास्ते अशिया के दरमियान, वजूद अशिया के दरमियान, वजूद हकीकी में, वजूद अशिया में और वजूद हकीकी में मुबायनत के कायल नहीं होते तौहीद वजूदी वाले। दो चीजें रहेंगे तो कौन ज़र्फ़, कौन मज़रूफ़, कौन हाल, कौन महल, कौन वो वाला है। नासिवल्ला मादुम महज है, वल आदम वला यूजद। मादुम हकीकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मौजूद हो सके, ये लिखा हुआ होता है। इसलिए अलायान साबित है तो माशम्मत रायहत वजूद, मोहिद्दीन इब्न अरबी, आयान साबित वजूद की वो भी नहीं सुन सकते। आयान साबित जो आपके इल्म में है और आपके वजूद की वो कहां से सुनता हूं? और ये इंसान के अंदर मिसालात रखे हुए हैं, ये तशबीही मिन कुल्लिल वुजूह नहीं है। अब लताफत का अंदाजा फरमाइए, हमारे ख्याल को ऐसा अल्लाह के ख्याल थोड़ी हुई, हमारे मालूम में हिस नहीं है, उनके सारे मालूम में हिस है, पकड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, मतरे कर रहे हैं। वजूद हकीकी से कोई शेख खाली नहीं हो सकती, वजूद बसी तो महज है। लताफत महजा एक ऐसा इंबिसात, एक ऐसा फैलाओ जिसको नफस रहमानी कहते हैं सूफिया। मखलूक में उलूहियत की तजल्ली रहती है। हर किसी शय को इला नहीं कह सकते आप, क्योंकि शैयत का जो तारुफ होता है ना वो इलाका नहीं रहता सब, شیعیت اس نمائش کا نام ہے جو ظاہر ہو رہی ہے, اس حد و تعین کا نام ہے جو اس وجود حقیقی میں اپیئر ہو رہا ہے. وجود کے سمندر میں جو چیز اپیئر ہو رہی ہے اس سے شیعیت کی نمائش, اس کو الہ بولیں گے تو شے کو الہ بولیں گے, شے سے کاٹ کے الہ بولیں گے تو پھر آپ فرق نہیں کریں گے. توحید کرنا پڑتا, وحد یوحد توحید باب تفصیل سے. یہ الہ بولے تو یہ نہیں ہوا نا, پھر یہ بولے تو یہ نہیں, توحید نہیں رہتی پھر, اس لیے شرک ہے. شان ہو کے دھیان میں فکر میں رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ شان ہو کی توفیقات پر نظر, اور اللہ شان ہو کی توفیقات پر نظر کے ساتھ ساتھ توفیق میں صغیر اور کبیر کا فرق الگ کر کے ہر چھوٹے سے چھوٹے خیر کو خیر سمجھنا, ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو عمل سمجھنا ہے. اس لیے ہر عمل صالح کی رعایت کرنی ہے, اور ہر عمل صالح میں جتنے ادب کے پہلو, جتنے تربیت کے پہلو پائے جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے, ان تمام عملی پہلوؤں کی پوری رعایت چاہیے. اس لیے ادب سے شروع ہوتا ہے تصوف کا علم, اور ادب پر ختم ہوتا ہے, اور اسلام شروع ہوتا ہے ادب سے, اور اسلام ختم ہوتا ہے ادب پہ. تصوف کلہ ادب, اور الاسلام کلہ ادب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمل ہو جانا کہ پہلے میں نے اسلام میں ادب کی کیا حیثیت ہے دیکھا, تو دیکھا کہ ایک سلس میرے کو ادب ملا, پھر آگے میں پہنچا سوچتے سوچتے تو پھر مجھے دو سلس ادب ملا, پھر سوچا 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 تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ پورا مذہب پورا دین ادب کا ہی نام ہے. تعدب مع اللہ, تعدب مع الملائک, تعدب مع الرسل, تعدب مع متعلقات الہی, تعلق سے ادب ہی ادب ہو. پورے عملوں کی جو شکلیں ہیں, یا تو اللہ کے ساتھ ادب کے حساب سے ہیں, یا اللہ کے بندوں میں جو نسبتیں بڑی بڑی لگی ہوئی ان کے ساتھ ادب کے حساب سے. پورا مذہب انہیں چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہاں تک چلے گئے ان کی نظر. اور اللہ کے ساتھ ادب بننے کے بعد میں تو کوئی باریک سے باریک چیز بھی نہیں چھوڑتی, اللہ ہے ایسے لطیف. مطلب یہ کہ وہاں پہ 10:30 ہو رہے ہیں بھائی, تم لوگوں کی تو چھٹی, کہاں تک سنتے رہیں گے, تو ایسے ہی ہے. جو آن لائن ہے وہ اگر سوئچ آف کرنا چاہیں تو کر لیں. جمعہ کے دن کرنا پڑا, وہی مطلب جو اپنی مجلس ہی ہوتی ہے تو وہ یہاں کے فجر کے فوراً بعد ہوگی, کیونکہ وہاں پہ ٹائم اتنا لپٹ گیا. رمضان میں 8:40 کو افطار کر رہے تھے ہم لوگ, رمضان شوال ذوالحج ذی الحجہ محرم شروع ہوا, 3 مہینے سے 8:40 کو جا کے 7:40 کو ہوئی, 7:40 کو جا کے 6:40 کو ہوئی, 6:40 کو جا کے 5:40 کو ہوئی, اب 5:20 کو مغرب ہوں. ساڑھے 6 بجے عشاء ہو جا رہی, 7:15 بجے ابھی ہو رہی, 6:30 تک چلے جاتی, 6:30 کا 6:05 5:15 وہاں کی 5:15 تک چلے جاتی, इतना बड़ा फर्क होता है दिन रात का। रात छोटी हो गई तो होती होते 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 एकदम छोटी हो गई, रात बड़ी हो दिन छोटा हो गया तो एकदम होते 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 एकदम छोटा हो गया। जोर होगी तो समझो मगरिब हो जाएगा। जोर की नमाज पढ़े एक घंटे के बाद ऐसा पढ़ो एक घंटे के बाद मगरिब पढ़ो। नौ घंटे का दिन रोजा भी नौ घंटे का पड़ता है। नौ घंटे में क्या होता पानी भी आदमी रहता है उत्तर के हफ्ते में, इसमें सर्दी पहले नौ घंटे में मगरिब हो गई फिर उसमें सर्दी, सर्दी में क्या पानी पिया जाता। तराई पड़ते होगा तो पानी पिए अपन खाना का इफ्तार करके नहीं पिए सोचित रहते। इससे इंतजाद का मफहूम निकलता है। इंतजाद का मतलब है कि भाई वहां इतना बड़ा दिन क्यों होता है, इतनी बड़ी रात क्यों होती है, क्यों ना बाजू में है वो मुल्क जमीन के कॉर्नर पे बाजू में है। तो बाजू निकला, बाजू से बीच निकला, बीच से बीच बिल्कुल बीच निकला, सेंटर निकला। तो जमीन पे कोई सेंटर तो है नहीं कि ऊपर की गोल की लकीर है उसके बाद लकीर। फिर आड़ी, ये तूले बलद ये अर्जे बलद। तो तूले बलद और अर्जे बलद जो जमीन पे है वो जमीन पे कोई देखा ना दिखे तो दिखती हो, मगर होने का इल्म है। तो किसी शय के शय से जो मजमून मफहूम होता है, किसी शय से जो मफहूम मुतखय्यल होता है मफहूम होता है उसको इंतजार कहते हैं। माबिहिल मौजूदियत, जिसे हमें होना समझ में आ रहा है, पलंग पलंग दिख रहा है तो पलंग का होना समझ में आ रहा है, पलंग से होना समझ में आता है, ये माबिहिल मौजूदियत है। माबिहिल मौजूदियत का मंशा इंतजार वजूद है, और वजूद मजदरी होना इसका मंशा इंतजार वजूद हकीकी है। वजूद हकीकी से होना समझ में आ रहा, होने से वो होना वो होने से ये चीज समझ में आ रही। इससे जो है पूरे मौजूदात के अंदर जो समझ नजर आ रही है एक वहदत मुशाहद होती है, और उस वहदत के अंदर एक खैरियत भी मुशाहद होती है। अशिया का जो इम्तियाज है वही खैरियत को बताने वाला, ये दीवार है तो लकड़ी नहीं है, लकड़ी है तो दीवार नहीं, ये लाइट है तो पंखा नहीं, पंखा है तो लाइट नहीं, आदमी है तो जानवर नहीं, जानवर है तो आदमी नहीं, ये आसमान है ये जमीन है ये पानी है ये मिट्टी है ये आग है ये हवा है ये लकड़ी है ये पत्थर है, खैरियत भी हकीकी है, अहमियत भी हकीकी है, अहमियत हकीकी है, खैरियत हकीकी कहते हैं सूफिया की इस्तेमाल। वो इंतजाई मफहूम के खुलने से खुलती वो चीज मफहूमा के इंतजाइया, इसीलिए अशिया की हकीकत मफहूमा के इंतजाइया है, वो उनकी माहियत है, उनकी जात नहीं है। जात माहुअश माहियत माहुअश जात मा बिहिश माकुम बिहिश को जाते हैं। अशय मा हुआ बेनफसी माहिया हिया बोलते हैं, मा हुआ हुआ बोलते हैं, तो इस तरह से इसलिए वाकिफ कराते हैं। सूफी सिलसिला फाजरिया के अंदर जो उलूम की बहस है का मुजाकरा, उसमें जो है तशबीह और तंजीह का मफहूम है जो गुज़िश्ता आया था, आज आई नहीं है तो खैरियत का थोड़ा मजमून आ गया, आई नहीं तो हकीकी खैरियत का। और ये मजामीन जल्दी जहन पकड़ता नहीं, मगर बिल्कुल नहीं सुनना भी नहीं, नहीं सुने तो कुछ जल्दी सुनेंगे तो एक नाजनबियत रहेंगे, सुनते 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 जहन काबिल बनता है उस फोन को अक्सर करने का غیرے تو حافظ معلومات معلومات علیم کا غور ہے تبھی تو ان معلومات کا ہی علیم ہے مگر وجودن غیریت نہیں رہ سکتی اس لیے اہمیت حافظ کی کیونکہ معلومات کو وجود نہیں ہے معلومات معدومات ہیں ان معدومات کو دو طرح سے تعبیر کرتے ہیں حضرت جدید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ معدومات کہتے ہیں اور ان معدومات پر اسماء کی اور صفات کی تجلی اور ظلال اور عکس کہتے ہیں ان معلومات پر یہ عکس اسماء صفات کے عکوس ہیں یہ ظلال ہیں اور یہ حضرت جدید الفسانی کی اصطلاح ہے اور حضرت محی الدین عربی کی اصطلاح میں معلومات کی حقیقت اسماء و صفات کیونکہ وہ نسبت ہے علم کی اصل میں نسب ہے نسب بین العالم والمعلوم کی معلومات کی حقیقت ان اشیاء کے اندر وعدت کے مفہوم کو پانی لگتا ہے آدمی کا ذہن اور وجود منبسط کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے وجود مادی سے تو اس مشاہدے کو وحدت الشہود کہتے ہیں وحدت الموجود وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کانسیپٹ اور وہ اصطلاح کا فرق یہاں سے نکلا مشاہدے میں وحدت کا مشاہدہ اس لیے وحدت الشہود اور وحدت الوجود الگ الگ نہیں ہے وحدت الوجود مفہوم کے اعتبار سے ہے وحدت الشہود کائنات میں مشاہدہ کرنا وحدت کا ویا ایک عقلی چیز ہو گئی اور ایک فرضی چیز ہو گئی وجدان اندر میں محسوس کرنا اس مفہوم کا اندر اس میں کسی چیز کو پانا اور اس پر تسلی کا ہو جانا تمانینت کا ہونا کہ ہونا بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن بول بھی نہیں سکتے یافت میں وہ ہوتا ہے یافت وجدان کو کہتے ہیں وجدان ادوم بولے نہیں جاتے وجدان کے واسطے الفاظ نہیں بنائے گئے وجدانیات کے واسطے الفاظ نہیں ہوتے اس کو علم حضوری بھی کہتے ہیں کہ وہ علم حاضر ہوتا ہے آدمی کے اندر اس وجہ سے اس کو صدیہ کے سلام علم حضوری کہتے ہیں اس کی مثال سمجھ میں آنے کے واسطے میں نے میں دیا کرتا ہوں کہ کیلے کا میٹھا ہونا انگور کا میٹھا ہونا آم کا میٹھا ہونا وجدانی چیز آپ فرق بولے ہوئے تو نہیں بولتے مٹھا کھٹا کھٹے کے مقابلے میں مٹھے کو امتیاز دینے کے واسطے الفاظ کیونکہ مٹھے کے مراتب اور کیفیتوں کو الگ الگ ظاہر کرنے کے واسطے نہیں ہے الفاظ نہیں موس کیسا مٹھا ہے انگور کے مقابلے میں فرق کر کے دکھا الفاظ میں کافی نہیں وجدانی چیز ہے جیسے وجدان مخلوقات میں چکی جانے والی چیزوں میں ہوتا ہے ایسے وجدان مصنوعات میں ہوتا ہے ایسے وجدان مصنوعات میں ہوتا ہے ایسے وجدان مشاہدے میں ہوتا ہے اسی وجدان سے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے یہ حضوری ہیں بلکہ آپ کو کیسا معلوم تو وہ اسی وجدان سے معلوم ہوتا ہے اتنا اس کو اتنا ضروری کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں بھی اور منطقیوں کی اصطلاح میں بھی اس کو اتنا ضروری کہتے ہیں یہ چیز تھی उस वक्त मैं देख रहा था, उस वक्त मुझे अंदर से यही नहीं जानता कि यही है। इसमें जरूरी के तौर पर इसमें जरूरी जो है माला वक्ता इरा दलील इनको कहते हैं, इसको दलील देने की जरूरत नहीं है। अंगार पे हाथ रख दिए जल गया, अब ये जलाता है कि जिसको जलाना ये अंगार से जलता है, आदमी को व्यक्ति बोलने की जरूरत है, दलील देने की जरूरत नहीं है। अब दलील होना उसके तो छिड़का लगेगा, दलील की दलील में बदी ही है, फिर सियात इसलिए बदहियात होते हैं कि उसमें दलील की जरूरत नहीं होती और इल्म भी होता है, क्योंकि यहां से बदही और नजरी की तफसील भी होती ही होती है। दलील की क्या जरूरत है? और जैसे जलता आग से है वैसे ही जलता है सर्दी से, बर्फ से भी वैसे जलता है, शक्ति के टेम्परेचर उतना गिरावट होना और हमको तजुर्बा हुआ उसको, उससे तब तक हमारी उसकी अजाब होने का अंदाजा हुआ। जैसे आग से जलाया जाता है बर्फ से भी जलाया जाएगा, जैसे गर्मी से जलाया जाता है सर्दी से भी जलाया जाएगा, बिल्कुल जलने ही की कैफियत हो जाती है, केवलियां खुली रह गई आपकी, वेलम कटित हो रही माइनस 120 जा रहा टेम्परेचर, 105 से लेके 130 तक जाता है शिकागो में टेम्परेचर माइनस, और जिस वक्त 120 115 से शुरू होता है तो बाजाबता इस पर इमरजेंसी में ऐलान होते रहता है रेडियो पे हर चीज पे टीवी पे, टेम्परेचर जो है 105 से आगे हो गया है, ज्यादा कोई आदमी बाहर अपनी उंगली भी न रखे क्योंकि वो उंगली जल के गिर जाने का डर है। ऐसे ही चुनका लगता है जैसे आग से लगता तब लड़ा गया होता पड़ता पूरा, और थोड़ा सा आग रह गए गिर जाते नीचे उठके गिर जाते जल्दी तो बेटा हो गया और फिर जिसमें से ताल्लुक खत्म हो जाता। जब उसका इल्म हासिल हुआ नहीं तो बोलने से तो समझ में नहीं आता कि सर्दी से कैसे जलेगा, सर्दी से जम जाएगा ज्यादा से ज्यादा समझ, जलता तो बहुत कम उसको है, जलना तो बहुत कम तो कह सकते,